हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 27, 28 एंड 29। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तत्थाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गेनया कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणममालम प्रेम पुमर्थो महा श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो न पर यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। किरात हूणा द्रपुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यवना कसादया येने च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभवेष्णवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती युत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। दूसरा स्कंद दूसरा अध्याय जिसका शीर्षक है हृदय में भगवान। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को योगी जन किस प्रकार से अपने देह को त्याग कर आगे बढ़ते हैं और किस किस लोकों की ओर जाते हैं उनके विषय में बता रहे हैं। श्लोक नंबर 26 में सुखदेव गोस्वामी ने बताया, अथो अनंतस्य मुखानलेन दंधयमानं सनिरीक्ष विश्वं निर्याति सिद्धेश्वरयुष्टदेशणं यद्वै परार्ध्यं तदुपारमेष्टं। कि जब इस ब्रह्मांड का अंत होता है, संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतिम संहार में, यानी जब पूरा ब्रह्मा जी का दिन समाप्त हो जाता है, उस समय अनंत के मुख से, अनंत शेष जो है उसके मुख से अग्नि की ज्वाला फूट निकलती है और योगी ब्रह्मांड के समस्त लोकों को भस्म हुआ होते होकर राख होते हुए देखता है। योगी जनों की उस समय भी मृत्यु नहीं होती है, वो उस समय भी नाश नहीं होते हैं। और क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना तपस्या की हुई होती है, योग साधना इनकी इतनी गहरी होती है और वो वह शुद्ध आत्माओं के द्वारा प्रयुक्त होने वाले वायुयानों द्वारा सत्यलोक के लिए प्रस्थान कर जाते हैं और फिर वो सत्यलोक की ओर चले जाते हैं। और सत्यलोक में वो लोग कितना समय रहते हैं? सत्यलोक में जीवन की अवधि 2 परार्ध अर्थात 1,54,80,000 सौर वर्ष आंकी जाती है। तो मन में कभी आता है ना कि इतना समय रहेंगे तो फिर बीमार हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, बुढ़े हो जाएंगे। 1,54,80,000 ईयर्स तक जब वो जी रहे होंगे तब उन इतने बड़े हो जाएंगे, बुढ़े हो जाएंगे वो तो, और किसी भी वस्तु का आनंद तो नहीं ले सकेंगे ना। लेकिन आगे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि वहां पर आयु कोई वृद्ध नहीं होता है, ना ही वहां पर कोई जरा होती है, ना मृत्यु होती है, ना शोक होता है, ना दुख होता है। वो सत्य लोक के विषय में आगे बताते हुए कहते हैं, न यत्र शोको न जरा न मृत्यु नाते न चोद्वेगरिते कुतश्चित् यच्चित्ततोधः कृपया निदविदां दुरंत दुःख प्रभवानुदर्शनात् न यत्र शोको न जरा न मृत्यु नाते न चोद्वेगरिते कुतश्चित् यच्चित्ततोधः कृपया निदविदां दुरंत दुःख प्रभवानुदर्शन न यत्र शोको न जरा न मृत्यु। वो जो सत्यलोक है न यत्र, वहां पर कभी भी नहीं होता क्या शोक यानी कोई प्रकार का दुख, न जरा यानी न बुढ़ापा न मृत्यु, वहां पर मृत्यु भी नहीं होती है। न आरती, आरती माने दुख, नारती चोद्वेग रिते, आरती माने कोई भी दुख या पीड़ा क्लेश नहीं होता, न च उद्वेग चिंता नहीं होती, रिते उसके अतिरिक्त कुतश्चित कभी कभी यत चित्त ततः क्योंकि उसके अंदर चेतना होती है तो फिर वहां पर होता तो नहीं है ये दुख, उनको कोई दुख नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो दूसरे लोगों को जब देखते हैं तत अद उनके हृदय में दया होती है, कृपया यानी हार्दिक दया से अन इदम विदाम भक्ति योग की विधि के अनभिज्ञ का, अन इदम विदाम यानी कुछ लोग को देखते हैं कि वो संसार में ही आनंद भोगने के लिए प्रयास कर रहे हैं जिनके कारण ही उसको दुखी मिल रहा होता है, फिर दुरंत दुख प्रभव अनुदर्शनात् दुरंत दुर्लंघ्य दुख इस इतना जरा कष्ट है, प्रभव बारंबार जन्म मृत्यु का जो कष्ट वो देख रहे थे क्योंकि उनकी तो आयु बहुत ज्यादा होती है ना, तो वो कंटिन्यूस देखते हैं और उनको लगता है कि बेचारे देखो लोग हैं कितने बेवकूफ हैं, इन लोगों को भगवान की भक्ति करनी चाहिए और भगवत धाम को प्राप्त करके आनंदित होना चाहिए। ये लोग क्यों है ना बारंबार जन्म मरण के चक्कर में फंसने वाले कार्य करते हैं। इस भौतिक जगत जो कि दुखों से भरा हुआ है उसमें इतना दुख है, उसी में आनंद प्राप्त करने की कोशिश। अब क्योंकि उनके हृदय में बहुत ज्यादा करुणा भर जाती है तो अपना उनको कोई दुख ना होता, ना यात्रा शोको न जरा न मृत्यु न आरती न उद्वेग रिते, उसके अब कुछ भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी दूसरों का दुख देखकर उनके हृदय में पीड़ा होती है कि वो क्यों नहीं भक्ति योग को अपना रहे हैं। अनुवाद देखिए, सत्यलोक में न तो शोक है न बुढ़ापा न मृत्यु, वहां किसी प्रकार की वेदना नहीं है जिसके कारण किसी तरह की चिंता भी नहीं है। वहां कभी कभी चेतना के कारण उन लोगों पर दया उमड़ती है जो भक्ति योग से अवगत न होने से भौतिक जगत के दुर्लंघ्य कष्टों को भोग रहे हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो हम कितना भी पढ़ेंगे ना हमको वो कभी तक समझ में नहीं आएगा जब तक कि हम किसी प्रमाणिक शुद्ध वैष्णव से इसको समझेंगे नहीं। क्योंकि भगवान को समझना किसी साधारण व्यक्ति के लिए बस की बात नहीं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम सारे शास्त्रों को पढ़कर भक्त बन सकते, नहीं। भक्त यदि हमें बनना है, भगवान की वास्तविकता को समझना है तो एक ही तरीका है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। कोई शुद्ध भक्त जिसको गुरु बनाकर हम भगवान के विषय में श्रवण करते हैं वो तरीका है। ये जिस तरह से केवल डॉक्टरी की किताबें पढ़कर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, उसे अनुभवी डॉक्टरों के अंडर में रहकर प्रैक्टिस करनी होती है, उसी तरह से केवल शास्त्र पढ़कर हम भक्त नहीं बन सकते। हमें किसी शुद्ध वैष्णव के अंडर में रहकर भक्ति की प्रैक्टिस करनी होती है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भौतिकतावादी स्वभाव के मूर्ख व्यक्ति परंपरागत प्रामाणिक ज्ञान का कोई लाभ नहीं उठाते। वैदिक ज्ञान प्रामाणिक है और इसकी प्राप्ति प्रयोग द्वारा नहीं अपितु प्रमाणिक व्यक्तियों यानी अधिकारियों द्वारा बताए गए ग्रंथों के प्रमाणिक कथनों द्वारा होती है। मात्र पंडित हो जाने से कोई वैदिक कथनों को नहीं समझ सकता। खाली शास्त्र पढ़ने से हम ये नहीं, इसके भाव को नहीं समझ सकते हैं। तो उसे उस वास्तविक विद्वान के पास जाना होता है जिसने शिष्य परंपरा से वैदिक ज्ञान प्राप्त किया है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 4.2 में बताया गया है, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदु। ये जो ज्ञान है भगवान कहते हैं मैं पहले सूर्यदेव को दिया, सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और इसी तरह से परंपरा से ये ज्ञान दिया जाता है। तो ये परंपरा अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसे श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जोर देते हुए कहा है कि श्रीमद् भगवद गीता में जिस ज्ञान पद्धति की व्याख्या की गई है वह सूर्यदेव को बताई गई थी और यही ज्ञान शिष्य परंपरा द्वारा सूर्यदेव से उनके पुत्र मनु को प्राप्त हुई और मनु से राजा इक्ष्वाकु को, भगवान रामचंद्र के पूर्वज थे, उनको प्राप्त हुई। इस प्रकार यह ज्ञान पद्धति एक एक करके महान ऋषियों को प्राप्त होती रही, किंतु कालानुक्रम में यह प्रामाणिक परंपरा टूट गई। सकाले ने हमत्ता योगो नष्ट परंतप। अतएव ज्ञान के सही अर्थ की पुनः स्थापना के लिए भगवान ने वही ज्ञान अर्जुन को पुनः प्रदान किया। क्यों? भक्तोसी में सखा से ती रहस्यम ही तद उत्तम उत्तम। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बता रहे क्योंकि शुद्ध भगवत भक्त होने के कारण वह इसे समझने का योग्य पात्र था। अर्जुन श्रीमद् भगवद गीता को जिस रूप में समझा उसका भी वर्णन हुआ है श्रीमद् भगवद गीता 10.12.13 में। क्या बताया? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवं पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदिदेवं अजं विभुं आहुस्त्वं ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव प्रवीषि मे। अर्जुन ने भगवान को परम ब्रह्म, परम धाम, परम पवित्र स्वीकार किया और ये भी बताया कि केवल मैं नहीं, संसार के समस्त बड़े बड़े ऋषि और महात्मा आपके विषय में इसी सत्य का बखान करते हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, किंतु फिर भी अनेक ऐसे मूर्ख व्यक्ति हैं जो श्रीमद् भगवद गीता के भाव को समझने के लिए अर्जुन के पदचिन्हों का अनुसरण नहीं करते। वो भगवान को भगवान नहीं समझते जिस तरह से अर्जुन ने समझा है। तो जैसा पहला शिष्य भगवान ने जिसको बताया है उसको जैसी भगवद गीता समझ में आई, समझो वही भगवद गीता का वास्तविक अर्थ है। लेकिन फिर भी श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं बहुत धूर्त लोग हैं, वो मूर्ख हैं जो नहीं समझते, बल्कि इसके बदले वे अपनी खुद की व्याख्याएं प्रस्तुत करते हैं जो उन्हीं के समान मूर्खता पूर्वक होती हैं और वास्तविक समझ प्राप्त करने के मार्ग में रोड़े का काम करती हैं तथा अल्पज्ञ तथा शूद्रों को गुमराह करती करने वाली होती। ये कहा गया है कि वैदिक कथनों को समझने के पूर्व मनुष्य को ब्राह्मण बन जाना चाहिए। यह आक्षेप उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि यह आक्षेप के स्नातक हुए बिना कोई वकील नहीं बन सकता। बहुत ही सुंदर यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि वैदिक शब्दों को समझने के लिए एटलीस्ट सत्वगुण में आकर ब्राह्मण बनना पड़ेगा। जब तक रजोगुण और तमोगुण में रहेंगे तब तक हम वैदिक वाक्य को नहीं समझ सकेंगे। अगर ये यहाँ पर बोला ये अपेक्ष उतना ही आवश्यक है कि स्नातक हुए बिना कोई भी वकील नहीं, जैसे जब तक कोई ग्रेजुएट नहीं हो जाता है तब तक वो वकील नहीं बन सकता, उसी तरह जब तक कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता है, सत्वगुण में स्थित नहीं हो जाता है। ब्राह्मण के गुण क्या है? श्यामो दम तपः शौचम शांतिरार्जवमेव च। ये जो ब्राह्मण के गुण जो है जब तक जीव के अंदर नहीं आते हैं तब तक वो वेद केवल जो संसार को दिखाने के लिए या कोई भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए वेदों को पढ़ेगा तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। पहले उसको ब्राह्मण की स्थिति तक पहुंचना होगा। अपितु किसी विशेष विज्ञान को अच्छी तरह समझने के लिए अनिवार्य है, ऐसा अपेक्ष किसी की भी प्रगति में बाधक नहीं होता है, अवश्य होना चाहिए। अगर हम ऐसे ब्राह्मण बन के शास्त्रों को पढ़ेंगे, ब्राह्मण की क्वालिटीज अपनाएंगे तो ही उसको समझेंगे, तो फिर विशेष विज्ञान को अच्छी तरह से समझने के लिए अनिवार्य है। जो योग्य ब्राह्मण नहीं है वे वैदिक ज्ञान की मनमानी व्याख्या करते हैं। सुपात्र ब्राह्मण वह है जिसने प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कठिन प्रशिक्षण प्राप्त किया है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण बस अपनी मर्जी से उन वेदों का बखान करना शुरू कर दे, उसकी व्याख्या करना शुरू। एक उसको भी एक शुद्ध वैष्णव के मार्गदर्शन में पहले शिक्षा प्राप्त करनी है, उसके बाद शास्त्रों को बताना है। आगे श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे, वे कहते हैं वैदिक विद्या हमें परमेश्वर श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को समझने में और अपने घर यानी श्रीमद् भगवत धाम प्राप्त वापस जाने में के इच्छित फल को प्राप्त करने के लिए तदनुकूल कर्म करने में मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। वैदिक विद्या का एक ही काम है कि हम पहले भगवान के साथ अपने संबंध को जोड़ें और संबंध जोड़ने के बाद अभिधेय। अभिधेय का मतलब क्या है कि मैं वो कौन सा कार्य करूं, वो कौन सा प्रोसेस है भक्ति का जो करने से मैं अपने वास्तविक प्रयोजन यानी लक्ष्य भगवान तक पहुंच सकूं। बस वैदिक का पूरा वांग्मय जो है वो यही बात बता रहा है। क्या? जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने कहा वैदिक विद्या हमें परमेश्वर श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को समझने में और अपने घर भगवत धाम जाने के इच्छित फल को प्राप्त करने के लिए तदनुकूल कर्म करने में मार्गदर्शन का कार्य करती है। लेकिन भौतिकतावादी लोग इसे नहीं समझ पाते, वे ऐसे स्थान में सुखी रहने की योजना बनाना चाहते हैं जहाँ सुख है ही नहीं। वे मिथ्या सुख के लिए या तो वैदिक कर्मकांड द्वारा या अंतरिक्ष यान द्वारा अन्य लोकों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। वो क्या करते हैं? या तो कर्मकांड करेंगे, भाई मैं दूसरे लोकों में पहुंच जाऊं, स्वर्ग में पहुंच जाऊं, ब्रह्मलोक में पहुंच जाऊं, या तो फिर अंतरिक्ष जो विमान बनाते हैं अपने कि भाई इस तरह अपने प्रयास करेंगे, उनके द्वारा पहुंचने का प्रयास करते हैं। लेकिन उन्हें यह भलीभांति समझ लेना चाहिए कि ऐसे स्थान में जहां दुख ही दुख है, सुखी होने के लिए भौतिक समझन से की कोई भी मात्रा पथ भ्रष्ट व्यक्ति को लाभ नहीं पहुंचा सकती है। कुछ भी प्राप्त हो जाए, आनंद प्राप्त नहीं होगा इस भौतिक जगत में, क्योंकि अंत तो गत्वा इस ब्रह्मांड को कुछ काल बाद अपने समस्त वस्तुओं सहित नष्ट होना होगा। तब भौतिकतावादी सुख की सारी योजनाएं जैसी की तैसी धरी रह जाएंगी। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य भगवत धाम वापस जाने के लिए योजना बनाता है। ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति भौतिक अस्तित्व से के सभी तापोजन मृत्यु जरा तथा व्याधि को पार कर देता है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति ये नहीं सोचता कि मैं किस तरह से स्वर्ग में जाऊं, ब्रह्मलोक में जाऊं, वहां पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि भी नहीं है और मैं ऐसी जगहों पे चला जाऊं जहां पर आनंद हो। लेकिन ये भौतिक जगत ना केवल पृथ्वी लोक बल्कि भौतिक जगत को ही दुखालय कहा गया है, तो हम किसी भी लोक में चले जाएंगे आनंद संभव नहीं है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने हमें बहुत ही सुंदर बताया, उन्हें यह बलि बांधी जान लेना चाहिए कि ऐसे स्थान में जहाँ दुख ही दुख है, सुखी होने के लिए भौतिक समंजन की कोई भी मात्रा पथ भ्रष्ट व्यक्ति को लाभ नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि अंत तो गत्वा इस ब्रह्मांड के को कुछ काल बाद अपने समस्त वस्तुओं सहित विनष्ट होना होगा। तब भौतिकतावादी सुख की सारी योजनाएं जैसी की तैसी धरी रह जाएंगी। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति भगवत धाम वापिस जाने की योजना बनाता है। वास्तव में भक्तों, वो लोग बहुत ही दुर्भाग्यशाली हैं जिन्हें भगवत धाम पर विश्वास नहीं है और जिन्हें भगवान के नाम पर विश्वास नहीं है। हमें सबसे पहले अपने लक्ष्य को देखना है कि मुझे उस जगह पर जाना है जहाँ पर कोई दुख नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, केवल आनंद ही आनंद है, क्योंकि वो आनंद के सागर का धाम है। तो वो भगवत धाम जाने का प्रोसेस क्या है? भगवान के पवित्र नाम का जप करना, भगवान की कथाओं को श्रवण करना। तो वो यही कार्य करता है, वो इसी तरह से योजना बनाता है कि कैसे मैं भौतिक जगत को पार करके भगवत धाम में जाऊं। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति भौतिक अस्तित्व के सभी तापों, जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि को पार कर जाता है। वह वास्तव में इसीलिए सुखी रहता है क्योंकि उसे संसार की एक भी चिंता नहीं रहती है, उसको कोई चिंता नहीं है और वो आनंद से रहता है। अपितु वह दयालु होने के कारण उस भौतिकतावादी लोगों के लिए दुखी रहता है जो कष्ट भोग रहे हैं, और इस प्रकार से वह कभी कभी ऐसे लोगों को भगवत धाम वापिस जाने की आवश्यकता का उपदेश देने के लिए उनके समक्ष आता है। सारे प्रमाणिक आचार्य भगवत धाम वापिस जाने की हकीकत का उपदेश देते हैं और लोगों को सचेत करते हैं कि ऐसे स्थान में सुख खोजने की कोई योजना ना बनाएं जहां सुख को कोरी कल्पना है। वास्तव में शुद्ध भक्त जो होते हैं, शुद्ध वैष्णव जो होते हैं, वो वास्तविक डेस्टिनेशन प्लेस के विषय में बताते हैं कि भौतिक जगत पे कुछ भी मिल जाएगा, आनंद आने वाला नहीं है। इसलिए भगवान का जो धाम है उसके अंदर जाकर, क्योंकि वास्तविक सुख यदि कहीं पर है तो भगवान का धाम है, वहीं पर जाकर जीव को वास्तविक सुख प्राप्त होता है। और इस भौतिक जगत में हम चाहे कितनी ही योजना बनाएं परंतु सुख प्राप्त नहीं होता। इसके आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ततो विशेषम प्रतिपद्य निर्भय तेनात्मनापो नलमूर्ति रत्वरम ज्योतिर्मयो वायुः पीत्य काले वायवात्मनाखं बृहदात्मलिङ्गं ततो विशेषं प्रतिपद्य निर्भय तेनात्मनापो नलमूर्तिदत्वरम् ज्योतिर्मयो वायुमोऽपि त्यकाले वायवात्मनाखं बृहदात्मलिङ्गं ततो विशेषं प्रतिपद्य निर्भया। ततो यानी उसके बाद क्या होता है, विशेषम यानी विशेष रूप से प्रतिपद्य प्राप्त करता है निर्भय बिना किसी संदेह के। तेनात्मना उससे आत्मना यानी शुद्ध आत्मा तेनात्मना पोनल मूर्ति आपवन जल अनलमन अग्नि मूर्तिमन रूप अत्वरम यानी पार करके ज्योतिमयो वायुम ज्योति यानी तेजवान वायुमंडल में उपेत्य पहुंच जाता है और काले यानी एक काल क्रम से वायात्मनाखम बृहदात्मलिंगम वायु यानी वायु आत्मना यानी आत्मा से खम यानी आकाश से ऐसे जितने भी हमारे पंचभूत है ना उनको क्रॉस करके आखिर में आकाश खम तक पहुंचता है बृहदात्मलिंगम। आत्मलिंगम मतलब आत्मा का असली स्वरूप। आगे ऐसे सारे आवरणों को पार करेगा ना जैसे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को उसके बाद उसको असली स्वरूप प्राप्त होगा। अनुवाद देखिए, सत्यलोक पहुंचकर भक्त विशेष रूप से अपने सूक्ष्म शरीर से अपने स्थूल शरीर जैसी पहचान में निर्भय होकर समाविष्ट हो जाने में समक्ष होता है और क्रमशः वह भूमि से जल अग्नि तेज तथा वायु की अवस्थाएं पार करता हुआ अंत में आकाश की अवस्था को पहुंच जाता है। श्रीला प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति समझाएंगे तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की बहुत ही सुंदर और खास बात श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक पूर्ण तथा अभ्यास से ब्रह्मलोक या सत्यलोक में पहुंच जाता है वह तीन विभिन्न प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने का पात्र बन जाता है। जो व्यक्ति अपने पूर्व पुण्य कर्मों के कारण कोई विशेष लोक प्राप्त करता है तो वह अपने आनुपातिक पुण्य कर्मों के आधार पर ही ऐसे स्थान पाता है। जो व्यक्ति विराट या हिरण्यगर्भ की पूजा करके स्थान प्राप्त करता है वह भी ब्रह्मा की मुक्ति के साथ साथ मुक्त हो जाता है। अब यहाँ पर जो ब्रह्मलोक में गया है उसके विषय में बता रहे हैं कि वो सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो कि विशेष भगवान की सेवा करते हैं, अपने उनके जो कर्म होते हैं उनके अनुसार उनको ये ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। ऐसे नहीं कोई यांत्रिक क्रिया से कोई ब्रह्मलोक तक नहीं पहुंच सकता। और जो व्यक्ति विराट या हिरण्यगर्भ की पूजा करते हैं यानी भगवान के विराट स्वरूप की पूजा करते हैं वह भी ब्रह्मा की मुक्ति के साथ साथ मुक्त हो जाते हैं। किंतु जो व्यक्ति भक्ति के बल पर स्थान प्राप्त करता है जिसका यहाँ पर विशेष रूप से उल्लेख हुआ है वह ब्रह्मांड के विभिन्न आवरणों को भेद कर अंततः परम अस्तित्व से परिपूर्ण वातावरण में अपने आध्यात्मिक स्वरूप को प्रकट कर पाता है। ततो विशेषम प्रतिपद्य निर्भयम। विशेष व्यक्ति होता है जो भक्ति योग के द्वारा ये जो स्थूल शरीर है उसकी धारणा से निकलकर अपने आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करता है। तो यहाँ उसी के विषय में बताया कि श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार सारे ब्रह्मांड गुच्छ के रूप में एक दूसरे के ऊपर नीचे स्थित हैं और इनमें से प्रत्येक में सात आवरण हैं। जलमय अंश इन सप्त आवरणों से परे होता है और प्रत्येक आवरण अपने पूर्ववृत्ति आवरण से दुगना अधिक विस्तरणीय होता है। जो भगवान इन सारे ब्रह्मांडों को अपनी श्वास से सृजन करते हैं, वे इन ब्रह्मांडों के गुच्छ के ऊपर शयन करते हैं। कारण सागर का जल ब्रह्मांड के जल आवरण से पृथक स्थित रहता है। ब्रह्मांड को आवरण करने वाला जल भौतिक होता है। अब यहाँ पर देखो, ये बता रहे हैं कि ब्रह्मांड को हर ब्रह्मांड के अंदर जो है वो साथ साथ आवरण, आवरण मतलब पर्दे होते हैं। तो जो ब्रह्मांड को आवृत करने वाला जो जल होता है वो भौतिक होता है, लेकिन ब्रह्मांड के ऊपर जो है वो कारण समुद्र है, और कारण समुद्र का जो जल होता है वो आध्यात्मिक होता है। जब कारणों का जल आध्यात्मिक होता है, फलस्वरूप यहाँ जिस जल आवरण का उल्लेख है वह समस्त जीवों के मिथ्या अहंकार का आवरण माना जाता है। यहाँ पर एक एक करके भौतिक आवरणों से क्रमिक मुक्ति का जो उल्लेख हुआ है वह भौतिक स्थूल शरीर की मिथ्या अहंकार की अवधारणाओं से क्रमशः मुक्त होने तथा उसके पश्चात सूक्ष्म शरीर में तब तक लीन रहने की क्रिया है जब तक भगवत धाम के परम क्षेत्र में शुद्ध आध्यात्मिक शरीर प्राप्त ना हो जाए। अब शुद्ध आध्यात्मिक शरीर तभी प्राप्त होगा जब भगवान से प्रेम करेंगे और भगवान के साथ अपने संबंध को जोड़ेंगे। तो वो जब तक प्राप्त नहीं होता है तब तक वो सूक्ष्म शरीर में ही रहता है। आगे श्रील प्रभुपाद जी श्रील श्रीधर स्वामी के विषय में बता रहे हैं कि श्रील श्रीधर स्वामी पुष्टि करते हैं कि भगवान द्वारा संस्कारित किए जाने के बाद प्रकृति का एक अंश महतत्व कहलाता है। इस महतत्व का ही एक अंश मिथ्या अहंकार कहलाता है। अहंकार का एक अंश शब्द ध्वनि है और शब्द ध्वनि का एक अंश वायुमंडल की वायु है। इस वायु का एक अंश स्वरूपों में बदल जाता है और इन स्वरूपों से विद्युत या उष्मा बनती है। उष्मा से पृथक की गंध उत्पन्न होती है तथा इस गंध से स्थूल पृथ्वी उत्पन्न होती है। ये सब मिलकर दृश्य जगत बनाते हैं। अब दृश्य जगत के बारे में श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरह से बनता है कि भगवान के द्वारा संस्कारित किए जाने के बाद ही प्रकृति में महातत्व आते हैं, 24 तत्व, और इस तरह से उन 24 तत्वों से मिलकर यह दृश्य जगत बनता है। दृश्य जगत का विस्तार 4 अरब माइल्स दोनों ओर का व्यास है। तब ब्रह्मांड के आवरणों का आरंभ होता है। पहले आवरण का विस्तार 8 करोड़ मील है। इसके पश्चात ब्रह्मांड के आवरण क्रमशः अग्नि, तेज, वायु तथा आकाश के ओर के हैं और प्रत्येक अपने पूर्ववर्ती आवरणों से दुगना विस्तार कहलाता है। भगवान का निर्भीक भक्त उन्हें क्रमशः भेद कर परम आवरण में प्रवेश करता है। अभी जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, ये सारे पर्दों को तोड़कर जो वास्तविक लक्ष्य है उसमें प्रवेश करता है, जहाँ प्रत्येक वस्तु एक ही आध्यात्मिक सत्ता है। तब भक्त किसी एक वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है जहाँ वह भगवान जैसा ही स्वरूप धारण करके उनकी दिव्य प्रेम भक्ति में लग जाता है। भक्तिमय जीवन की यही सर्वोच्च सिद्धि है। पूर्ण योगी को इससे अधिक कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती। अधिक और इससे अधिक और कुछ होता ही नहीं है। भगवत धाम प्राप्त कर लो, अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करके उसी स्वरूप में भगवान की इच्छा, तो भक्ति की इच्छा के अतिरिक्त और कुछ प्राप्त करना नहीं होता है। इसी बात को अगले श्लोक में थोड़ा सा और क्लियर करते हुए कहते हैं, ग्राणेन गंधम रसनेन वैरसम रूपं च दृष्ट्या श्वसनं त्वचैव श्रोत्रेण चोपीत्य न भूगुणत्वं प्राणेन चाकूतिमुपैति योगी ग्राणेन गन्धं रसनेन वैरसं रूपं च दृष्ट्या श्वसनं त्वचैव श्रोत्रेण चोपेत्य नाभो गुणत्वं प्राणेन चाकूतिमुपैति योगी ग्राणेन गंधम रसनम च रसम। ग्राणेन मतलब सूंघने से गंधम यानी सुगंध, रसनेन मतलब स्वाद से वह रसनम यानी स्वाद, रूपम च दृष्ट्या श्वसनम तत्वचय रूपम च दृष्ट्वा यानी कि जो रूप है स्वरूप भी दृष्ट्वा यानी दृष्टि से श्वसनम संपर्क त्वचा यानी स्पर्श एवं श्रोत्रेण कान के कंपन से च उपैति प्राप्त करके नभ गुणत्वम यानी आकाश की पहचान प्राणेन चाकूतिमुपैति प्राणेन मतलब इंद्रियों से च भी आकुतिम यानी भौतिक कार्यकलाप उपैति प्राप्त करता है योगी यानी भक्त। अनुवाद देखिए, इस प्रकार भक्त विभिन्न इंद्रियों के सूक्ष्म विषयों को पार कर जाता है, यथा सूंघने से सुगंध को, चखने से स्वाद को, स्वरूप देखने से दृष्टि को, संपर्क द्वारा स्पर्श को, आकाशमय पहचान से कान के कंपनों को तथा भौतिक कार्यकलापों से इंद्रियों को। ये क्या, इस प्रकार भक्त विभिन्न इंद्रियों के सूक्ष्म विषयों को पार कर जाता है। ये जो जितने भी विषय है ना इंद्रियों के, वो इस भौतिक जगत में ही होते हैं, लेकिन जब हम आध्यात्मिक जगत की ओर जाते हैं तो इन सारे विषयों को योगी या भक्त पार कर लेता है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते, आकाश से परे सूक्ष्म आवरण है जो ब्रह्मांड के प्राथमिक आवरणों के समान है। ये स्थूल आवरण सूक्ष्म कारणों के आंशिक अव्ययों के विकास है। इस तरह योगी या भक्त स्थूल तत्वों के विलीन होने के साथ साथ सूंघने के से सुगंध जैसे सूक्ष्म कारणों का परित्याग कर देता है। इस तरह शुद्ध आध्यात्मिक सफुलिंग स्वरूप जीव सारे भौतिक कर्म से शुद्ध होकर भगवान में प्रवेश करने के योग्य बन जाता है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर योगी किस तरह से धीरे धीरे प्रगति करता है उसके विषय में हम पढ़ रहे हैं। कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथ राशि श्रीमद् भागवत महापुराण।